हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के इस ज्ञान यज्ञ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हमने पढ़ा कि हमें शास्त्र क्यों अध्ययन करना चाहिए, वेदों के विषय में पढ़ा, गीता के विषय में पढ़ा, गुरु के विषय में पढ़ा, और उसके बाद हमने ये जाना कि हमारे जीवन की इम्पोर्टेंस क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, हमें संसार में इस भगवान श्री कृष्ण ने हमें क्यों बनाया और कैसे हमारे जीवन का, इस भौतिक सृष्टि का कैसे निर्माण किया। उसके बाद हमने प्रकृति के विषय में कंप्लीट समझा। अब और अपने सनातन धर्म के विषय में मैंने पूरी पूरी कोशिश की कि आपको समझाने की। अब उसके विषय में कुछ भी प्रश्न कल भी नहीं आए, देखिए ये जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ना, इसको यहीं क्लियर कर लीजिए। अब एक और दो टॉपिक्स रह गए हैं, काल और कर्म। इसके बाद हम बैक नहीं जाएंगे, फिर हमें पूरा जो श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक्स है ना, डेली उन श्लोक्स के ऊपर बात करनी होगी, क्योंकि श्लोक्स को समझना होगा हमें। इसलिए जो बेस है ना, वो पहले से आप अच्छे बना लो, रोज का श्लोक रोज सुनो, रोज का लेक्चर, और जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी पूछ लो, क्योंकि बाद में हम श्लोक्स पे बात करेंगे तो फिर ब्रेक में जाना कि भाई उसमें आपने ये कहा था ये नहीं। इसको जो क्लियर करना है वो अभी कर लोगे तो आप लोगों को बहुत इजी रहेगा आगे जाकर। तो आज का हमारा टॉपिक है काल। कुछ लोग काल का मतलब ये समझते हैं, जैसे काल नहीं आता है यमराज के दूत, इसको बोलते काल। लेकिन यहाँ पर काल जो भगवद गीता में जिस काल का वर्णन है, जो भगवद गीता का विषय है, उस काल का अर्थ है समय। समय को तो सब जानते हैं, लेकिन आज हम जिस समय को जानते हैं सेकंड से स्टार्ट होता है। जैसे जब 60 सेकंड होते हैं तो एक मिनट बनता है, जब 60 मिनट मिलते हैं तो एक घंटा होता है, जब 12 घंटे मिलते हैं तो एक दिन, और जब 12 घंटे और मिलते हैं तो एक रात, यानी 24 घंटे का एक संपूर्ण दिन बनता है। ऐसे 30 दिन बीतते हैं तो एक महीना, 12 महीने बीतते हैं तो एक साल, और ऐसे यहाँ तक तो आपको आता है ना। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। जब ऐसे 4,32,000 साल बीतते हैं तो एक कलयुग होता है, यानी जिस कलयुग में आप रह रहे हो, जो युग चल रहा है, उसकी टोटल आयु है 4,32,000 साल। और आपकी इत्तला के लिए, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं आपको बता दूं कि उसमें से अभी सिर्फ 5,000 साल ही बीते हैं। 5,000 साल बीते हैं कलयुग में से, अभी 4,27,000 साल आपको और भी मजीद बर्दाश्त करना है इस कलयुग को, यदि नहीं निकल सके यहाँ से तो। और ये भी बता दो कि ये कलयुग जिसको आप घोर कलयुग बोल रहे हो, इस कलयुग में इतने अपराध हो रहे हैं, इतनी घिनौनी हरकतें, लोगों की विचारधारा इतनी कंडम हो गई है, तो वक्त गुजरते गुजरते न जाने क्या हो जाएगा। तो कृपया अपने आप को, अपने जीवन को सिक्योर कीजिए, शास्त्र को अध्ययन कीजिए, ताकि वापिस से इस कलयुग में आने नहीं पड़े। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि 4,32,000 साल जब बीतते हैं तो एक कलयुग, उससे डबल यानी 8,64,000 वर्ष बीतते हैं तो एक द्वापर, और उससे तिगुना यानी 4,00,000 के तिगुना अगर करते हैं तो 12,96,000 वर्ष जब बीतते हैं तो एक त्रेता युग, और 17,28,000 युग जब बीतते हैं, सॉरी 17,28,000 वर्ष जब बीतते हैं तो एक सत्युग होता है। अब आपको सत्युग, कलयुग और द्वापर और त्रेता युग की आयु बता दी ना। जैसे कलयुग की कितनी थी, 4,32,000, उसका डबल 8,64,000 द्वापर युग की, 12,96,000 त्रेता युग की, 17,28,000 युग बीतते हैं तो एक सत्युग होता है, ठीक है। अब इन सब को अगर प्लस किया जाए ना, इन सब की युग की अवधि को अगर मिलाया जाए तो बनते हैं 43,20,000 वर्ष, यानी 43,20,000 ईयर्स, और 43,20,000 वर्ष जब 1,000 बार बीत जाते हैं, यानी कि 43,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1,000, जब 1,000 साल बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी के दिन के 12 घंटे होते हैं, समझ में आ रहा है, 43,20,000 इंटू 1000 ब्रह्मा जी के 12 घंटे ऐसी ही ब्रह्मा जी की एक रात होती है। तो जानते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन कितना लंबा होता है, 8,64,00,000 वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक दिन यानी यहाँ इस पृथ्वी लोक पर, हमारे इस जमीन पर जब 8,64,00,000 वर्ष बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है। ब्रह्मा जी के ऐसे 30 दिन का एक महीना और ऐसे 12 महीने का एक साल, और वो ब्रह्मा जी उनकी पूरी आयु है 100 साल, यानी वो ब्रह्मा जी ऐसे 100 साल बीत तक जीते हैं। और ब्रह्मा जी जब 100 साल उनके कम्प्लीट होते हैं तब भगवान विष्णु एक बार सांस लेते हैं। जो कारण दक्षाय विष्णु के विषय में हमने बताया था ना, जो सांस ले रहे हैं, तो विशाल कीजिए, कल्पना कीजिए कि वो भगवान विष्णु कितने बड़े होंगे, कारण दक्षाय विष्णु कितने विशाल होंगे। ब्रह्मा जी का पूरा जीवन, इतना बड़ा जीवन जब भगवान की एक सांस की अवधि में खत्म हो जाता है, तो हम जैसे कीड़े मकोड़े तो कितनी बार आकर चले जाते होंगे। इस सत्य को ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्म संहिता में कहते हैं, यस्यैकनिश्वसित कालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथः विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वह भगवान विष्णु जब एक सांस लेते हैं तो मेरे जैसे ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त हो जाता है। इतने महान भगवान विष्णु जो हैं, वो भी उस भगवान, उस आदि पुरुष भगवान की एक कला मात्र है, उनका एक अंश है, वो साक्षात भगवान नहीं है। जैसे मैंने आपको भगवान के बारे में बताया था कि उनमें से कारण दक्ष, उनमें से फर्स्ट एक्सटेंशन, फिर दूसरा वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, ये सब निकलता है, उसके बाद महाशंकर, उसके बाद कहीं जाकर कारण दक्ष विष्णु। तो वह भगवान जो स्वयं 64 कला के अवतार, भगवान जो अवतारी है, जो स्वयं ब्रजेन्द्र नंदन भगवान श्री कृष्ण है, जिससे ये सारा खेल रचा जा रहा है, वह कितने महान होंगे। तो यदि उनकी शरण ग्रहण कर लें तो फिर डर किस बात का, किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ भगवान की शरण में जाना। भगवान स्वयं कहते हैं माश्च तुम आ जाओ, बाकी सब तो जिस जो जो चीज। इतना अच्छा मुझे एक श्लोक लगता है श्रीमद भगवद गीता 10.41। भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कहते हैं, बोलते वक्त कितने अच्छे लग रहे होंगे जब उन्होंने ये कहा होगा। भगवान ने कहा, यद्यत् विभूतिमत् सत्त्वम् श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजो अंश संभवम्। यद्यद् विभूतिमत् सत्त्वम्, यद्यद् मतलब जो जो, विभूति मतलब ऐश्वर्य, यानी इस संसार में जो भी तुम्हें सुंदर ऐश्वर्यवान, मत सत्वम यानी ऐश्वर्य से भरा हुआ, सत्वम मतलब अस्तित्व वाला, इस संसार में जो भी तुम्हें अच्छा लग रहा है, जो भी सुंदर लग रहा है, जो भी देखने लायक लग रहा है, जो भी अडोरेबल लग रहा है, जो भी प्रशंसा के लायक लग रहा है, श्री मधुर जितमेव, श्री मधुर का मतलब होता है सुंदर, ऊर्जितम का मतलब तेजस्वी, एवं मतलब निश्चय ही, आगे कहा तत्तदेव अवगच्छत्वम, तत्तदेव मतलब वो जो कुछ भी है, गच्छत्वम मतलब तुम ऐसा जानो, मम तेजो अंश संभवा, वो कुछ नहीं है, मेरे जो असीम तेज है ना, उसका एक छोटा सा अंश है, जैसे भगवान कहते हैं तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सुंदरता तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक सफुलिंग मात्र से अद्भुत होते, यानी कि जैसे एक भड़कती हुई आग हो, उसकी छोटी सी चिंगारी, जो भी संसार में तुम्हें देखने लायक लग रहा है, जो सुंदर लग रहा है, तेजस्वी लग रहा है, जो ऐश्वर्यवान लग रहा है, जो आपको ऐसा लगता है कि इसे देखा जाए, इससे प्रेम किया जाए, वो भगवान की असीम ऐश्वर्य का सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी है। विचार कीजिए भक्तों, जब इस संसार में भगवान की छोटी सी चिंगारी यानी कि भगवान की विभूतियों की एक छोटी सी झलक को देखकर हम इतना आकर्षित हो रहे हैं और इतना अपने आप को सोच रहे हैं कि ये प्राप्त कर लें तो सुखी हो जाए, वो जब वो साक्षात भगवान हम उसे प्राप्त कर लेंगे, जब साक्षात भगवान का प्रेम, इस संसार में थोड़ी थोड़ी प्रेम की चीजें, जहाँ प्रेम को ले लीजिए, संसार में थोड़ा सा भी प्रेम अगर कोई हमें करता है तो हमें कितना अच्छा लगता है वो, कि कितना अपने जीवन कैसे बोलते हैं, फिर सारा संसार हमें अच्छा लगने लगता है, कुछ बुरा नहीं लगता। तो वो भगवान ने तो कहा जो भी संसार में तुम्हें अडोरेबल लग रहा है, जो भी प्यारा लग रहा है, जो भी देखने लायक लग रहा है, वो मेरे तेज की एक छोटी सी सफोलिंग है, एक छोटी सी चिंगारी है। तो साक्षात भगवान का जब प्रेम मिलेगा तो उसमें कितना आनंद आएगा। तो उस असीम आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। महाराज यहाँ पर तो ब्रह्मा जी ये बता रहे हैं कि जो कुछ भी है वो भगवान श्री कृष्ण की असीम महिमा का एक छोटा सा अंश है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, और अगर समय हमने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण कितने बड़े हैं, कितना ब्रह्मा जी कितने बड़े हैं, और समय के विषय में पढ़ा, समय की महिमा को यदि किसी ने जान लिया तो वो जीवन में बहुत प्रगति कर सकता है। वास्तव में भगवान ने भगवद गीता में समय को इसलिए बताया क्योंकि हम समय की महत्ता को, काल की महत्ता को नहीं जानते। देखिए भक्तों, आपके पास जो आज सबसे कीमती चीज है वो समय है। समय को व्यर्थ नहीं गंवाना। आप देखिए, भगवान, देवताओं और ब्रह्मा जी की तुलना में हमारा जीवन कुछ भी नहीं है, और फिर भी हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत जीना है, बहुत टाइम बाकी है। वास्तव में कुछ भी नहीं जीना है। हम लोग सोचते हैं कि बहुत जीना है। दुख तो हृदय में तब होता है जब मूर्ख लोग कहते हैं कि हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। कुछ लोग ताश खेलते हैं, कुछ मोबाइल में वीडियो गेम खेलते हैं, कुछ फिल्में तीन तीन घंटे बैठ कर देखते हैं, घंटों एंटरटेनमेंट के लिए अलग अलग साधन, और इंटरनेट पर फिजूल चैटिंग। कोई पूछे ऐसा क्यों कर रहे हो तो बोलेंगे बस कुछ नहीं, टाइम पास कर रहे थे। अरे मूर्ख, तुम क्या टाइम पास करोगे, टाइम तुम्हें पास कर रहा है। यूं पास करेगा कि मृत्यु आ जाएगी और पता भी नहीं चलेगा कि कैसे काल ने तुम्हें दबोच लिया। भागवत में लिखा हुआ है, इतना सुंदर भगवान श्री कृष्ण श्लोक कहते हैं 10.434। इतना सुंदर भगवान ने कहा, मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम्। कि तुम जो सोच रहे हो ना आज तक, ये कमा लूं, वो कमा लूं, मृत्यु सर्व हरश्चाहम्, मैं मृत्यु बनकर आऊंगा और तुम्हारी समस्त जो भी तुमने आज तक अर्जित किया है वो तुमसे ले लूंगा। साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो आप जिसके लिए, जिस जिस चीज के लिए आपने आज तक प्रयत्न किया है वो सब, ये काल चक्र कभी रुकता नहीं है। कितनी ही ताकत क्यों ना लगा दो, ये काल चक्र कभी नहीं रोक पाओगे। इस काल की, समय की महिमा को हमें जानना चाहिए। एक एक सेकंड हमारे जीवन का बहुत कीमती है। जीवन का एक सेकंड यदि चला जाए तो दोबारा नहीं आने वाला। वो दिन गया तो फिर नहीं आएगा। इसलिए सूरदास जी कहते हैं, मन पछताइए क्या होए जब अवसर बीते। अवसर बीतने के बाद, मर जाने के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं। इसलिए अभी इसी समय समय की महिमा को जानना चाहिए। परंतु हम तो मस्त होते हैं उस चूहे की तरह। श्रीमद् भागवतम में एक चूहे का दृष्टांत आया है, बहुत सुंदर है। भागवतम में लिखा है कि चूहा जब अपने लिए घर बनाता है तो उसके बहुत सारे दरवाजे बनाता है। आप देखते होंगे, चूहा एक खेत में बिल बनाता है तो दूसरी तरफ से निकलता है, बहुत दरवाजे। इसी तरह हम लोग भी जब घर खरीदते हैं तो बहुत प्लानिंग करते हैं। इधर बेडरूम बनाएंगे, उधर ड्राइंग रूम बनाएंगे, उधर किचन बनाएंगे, उधर मास्टर बेडरूम बनाएंगे, उधर गेस्ट रूम इत्यादि। इतनी प्लानिंग। जिस तरह वो चूहा प्लानिंग करके बाहर निकलता है तो क्या होता है, बाहर सांप बैठा होता है। आपको पता है, एक बार क्या हुआ, एक सपेरा था। सपेरा सांप पकड़ता है ना, वो खेत में गया सांप पकड़ने के लिए, लेकिन उसको सांप नहीं मिला तो उसने चूहा पकड़ लिया। बोला कुछ तो पकड़ूं। फिर जब चूहा पकड़ लिया तो थोड़ी देर के बाद सांप भी मिल गया। अब उसके पास वो पिटारी तो एक ही थी ना सांप डालने की, तो उसने क्या किया, जहां पर चूहे को डाला था वहीं पर सांप को भी पकड़ के डाल दिया। अब सांप भी अंदर था, चूहा भी अंदर था। चूहा बेचारा डर रहा था कि सांप तो अभी मुझे डसेगा, मैं मर जाऊंगा। तो फिर सांप ने बोला, तुम डर क्यों रहे हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम दोनों दोस्त हैं, अब साथ रहना है तो दोस्ती बन के रह जाते हैं। चूहा इतना खुश हुआ, बोला आप मेरे दोस्त बनोगे, तो बोला हाँ मैं बनूंगा अगर तुम बनाओगे तो। तो फिर चूहे और सांप की दोस्ती हो गई। फिर चूहे, सांप ने बोला कि मेरे पास बहुत अक्ल है, अगर आप उस अकल के साथ चलोगे ना, मतलब मेरी अगर प्लानिंग के साथ चलोगे तो हम दोनों की मुक्ति हो सकती है। तो उसने बोला अच्छा मुक्त भी हो सकती कैसे? तो बोले देखो तुम्हारे दांत कितने मजबूत हैं, तुम इस पिटारी में एक होल बनाओ, बिल बना लो, वहां से निकल जाएंगे दोनों इजीली। अभी तो वो सोया हुआ है, जागेगा नहीं। तो बोला ठीक है ऐसा करता हूँ। तो चूहे ने बहुत मेहनत की, पूरी रात मेहनत करके एक बिल बना दिया। और फिर शाम को बोला अभी तो तैयार हो गया बिल, निकलो आप भी आओ। तो उसने बोला नहीं नहीं पहले आप नहीं निकलो, पहले आपने तो बनाया है तो जाहिर सी बात है आपकी साइज का होगा, मैं चेक तो करूं मेरी साइज का है या नहीं, और मैं लंबा भी हूं बहुत, मेरा शरीर लंबा है। ऐसा नहीं तुम निकल जाओ और पीछे मैं जब निकलने वाला हूं वो देख ले, तो पहले मैं निकल रहा हूं आप बाद में निकलो। तो चूहे ने बोला ठीक है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मेरे दोस्त हो पहले आप निकल जाओ। तो सांप ने जब निकला वहां से, निकल गया बाहर, और बाहर है ना मुंह खोल के खड़ा हो गया हाँ ऐसे। और उसके बाद जब चूहे की बारी आई तो गप करके खा लिया उसको, सारे मंसूबे फेल। वैसे ही संसार में मनुष्य जब प्लान करता है, यहाँ बंगला वहां घर, यहाँ गाड़ी यहाँ, ये कमाए वो कर, ये प्लान करते हैं वो प्लान करते हैं, एक दिन काल आता है। वास्तव में ये जो सांप था ना जिसके साथ उस चूहे ने दोस्ती की, वो सांप काल है। हम भी सोचते हैं कि समय तो मेरे हाथ में है, ये करूं वो करूं, समय के साथ दोस्ती कर लेता है, लेकिन समय जब आता है, जब काल आता है तो सब कुछ नष्ट करके चला जाता है। तो और इसीलिए भगवान कहते हैं मृत्यु सर्व हरश्चाहम, मैं तुम्हारा, तुमने जो कुछ आज तक प्लानिंग की है, आज तक बचपन से लेकर आज तक जितना कुछ कमाया है, मैं एक क्षण काल बन के आऊंगा। अहम, भगवान ने साफ साफ कहा वो काल मैं हूँ जो मृत्यु के रूप में तुम्हारे पास आता है। और क्या करता है, सर्व हरश्चाहम, तुमने जो कुछ भी कमाया होता है वो सब हरण कर लेता है। और इवन जो तुमने इतना ये पालित पोषित किया हुआ जो शरीर है, जिसके लिए कार्य करते हुए, जिसको खुश करने की कोशिश करते हुए थकते नहीं हो, वो भी तुमसे छीन लिया जाएगा। और आगे बताया कि बहुत आज अपने आप को समृद्ध समझते हो ना कि ये है मेरे पास, ये है ये है, उस मृत्यु बन के आऊंगा सब कुछ। ये डेफिनेशन बताई भगवान ने कि मृत्यु के टाइम पर मैं सब कुछ ले लूंगा। और आगे इतनी सुंदर लाइन बताई भगवान ने, उद्भवस्य भविष्यताम का मतलब होता है वापस से भविष्य में, यानी कि मैं ही आगे होने वालों का उत्पन्न करने, यानी कि जब अभी तो तुम्हें मार डालूंगा, काल बन के आऊंगा और वापस से तुम्हारे भविष्य में तुम्हें जो जन्म दूंगा ना, उसमें तुम्हारे पास टक्का भी नहीं होगा, नंगा पैदा करूंगा फिर वापस से यही जीवन, जिस तरह से अभी इस जीवन में तुमने शुरू से लेकर आखिर तक स्ट्रगल की है कमाने के लिए, उसी तरह दूसरे जीवन में भी तुम्हें वही कार्य करना पड़ेगा कि किस तरह से कमाऊं, किस तरह से खुश रहूं। ऐसे करते 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 तुम्हारी करोड़ों जीवन बीत जाएंगे यदि तुम मेरे सरेंडर नहीं हुए, जब तुमने अगर तुमने मेरी शरण ग्रहण नहीं की। तो बस यह परिश्रम, यह स्ट्रगल, बार बार जन्म मृत्यु ही तुम्हारे हिस्से में आएगी। इसलिए भक्तों हमें काल की महिमा को जानना चाहिए। काल की महिमा को शास्त्र में बहुत बहुत बताने के लिए बहुत सारे दृष्टांत दिए गए हैं। एक बहुत ही सुंदर कथा है, एक बार इंद्र लोमश ऋषि के पास गए। लोमश ऋषि को आप जानते हो, वास्तव में उनका नाम रोमश ऋषि था, लोमश ऋषि नहीं था, रोमश। रोम पता है किसको बोलते हैं, जो हमारे रोंगटे होते हैं ना, हमारे शरीर पे जो बाल होते हैं उसको रोम कहते हैं। और उनका नाम रोमश ऋषि क्यों पड़ा, क्योंकि उनके शरीर पे बहुत बहुत बाल थे, इतने सारे बाल थे जैसे जैसे भालू के शरीर पे कैसे होते बहुत सारे बाल होते हैं, ऐसा उनके शरीर पे भी था। तो फिर उनको है ना, इसलिए उनको रोमश ऋषि कहते थे। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे काल क्रम में नाम बिगड़ जाता है ना, तो उसका नाम लोमश ऋषि पड़ गया। तो उनका कार्य क्या था, एक बार वो क्या करते थे, जप करते थे, कंटिन्यूस भगवान के नाम का जप करते थे और बाहर बैठ के करते थे। उनका घर भी नहीं था, तो जब धूप निकलती थी ना, तो अब जहाँ पर देखो बैठ के जप करते थे, फिर जब धूप निकलती थी तो दूसरे साइड पे आ जाते थे, जहाँ पर कुछ छांव होती थी वहां पर बैठ के जप करते थे, फिर वहां पर भी जो धूप आ जाती थी फिर दूसरे साइड पे आ जाते थे। बस पूरा दिन जप करते थे, सिर्फ वो तेज धूप जब कड़कती हुई इसको तंग करती थी तो साय में आ जाते थे। तो एक बार इंद्र, जो देवराज इंद्र है ना, उनको तो जानते हो सब, वो वहां से गुजर रहे थे और देवराज इंद्र ने उनसे पूछा, लोमश ऋषि से पूछा कि आप इतनी इतनी तपस्या कर रहे हो, भगवान का इतना नाम ले रहे हो और धूप से कितना परेशान हो रहे हो, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपने लिए एक कुटिया बना लो, एक छोटी सी कुटिया, आराम से उधर बैठ के जप करो ना, कभी उधर बैठते हो कभी उधर बैठते हो, तो आपके ना जप में भी प्रॉब्लम हो रही, तो आप एक घर बना लो ना छोटा सा। तो उसने बोला कि जीना है बहुत कम दिन, क्या फजीहत में फंसूं, क्या घर बनाना, अब मैं ना घर वर बनाने में कितना टाइम लगता है, मैं घर नहीं बनाऊंगा, मैं ऐसे ही जप करूंगा। तो फिर उसने इंद्र ने सोचा कि अच्छा शायद इसको बहुत जल्दी मरना होगा, मतलब क्योंकि ऋषि लोग जो इतनी तपस्या करते हैं उनको पहले से पता चल जाता है कि मुझे ज्यादा दिन रहना है या कम दिन रहना है, हमें तो पता नहीं, हमारी तो मृत्यु का अगले क्षण में भी हो सकती है, लेकिन जो बहुत जिनकी तपस्या बहुत, जिनका नाम जब बहुत ज्यादा दृढ़ होता है, जब उनका हृदय पवित्र होता है ना, तो उनको पहले ही पता चल जाता है। तो फिर इंद्र के मन में जिज्ञासा हुई कि ये बोल रहा है कि बहुत कम दिन जीना है, मैं देखो कितने दिन और जीना है ताकि ये है ना ये इसी तरह से जी रहा है, तो फिर बस एक दो दिन ही जीना होगा उसको, इसीलिए कर रहा होगा। तो इंद्र ने उससे पूछा, महाराज मैं क्या आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, आप बोल रहे हो कि आपको बहुत कम दिन जीना है, तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपकी आयु बाकी कितनी शेष रह गई है? तो लोमश ऋषि ने कहा, मेरी आयु के विषय में जानना चाहते हो? तो बोला हाँ। लोमश ऋषि ने कहा, ये जो मेरे शरीर पर आप बाल देख रहे हो ना, ये जो जितने रोंगटे मेरे शरीर पर देख रहे हो, वो जब सारे झड़ जाएंगे ना, जब सारे खत्म हो जाएंगे ना, तब में मेरी मृत्यु आएगी। तो बोला अच्छा ऐसा है, फिर आपके बाल कब झड़ेंगे क्या आपको ये भी पता है? तो बोला हाँ ये भी मुझे पता है कि जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन मैंने बताया था कितना था, 432,000 साल का ब्रह्मा जी का एक दिन और 432,000 साल की एक रात, यानी कंप्लीट उनके 24 घंटे होते हैं 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक दिन और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की एक रात, यानी 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का पूरा एक दिन 24 घंटा, यानी कि ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है 8 अरब 64 करोड़ वर्ष बीतने के बाद। और ये महाशय लोमश ऋषि कह रहे हैं, जब ब्रह्मा जी का एक दिन गुजरता है तो मेरा एक बाल गिरता है। विचार कीजिए भक्तों, हमारा जीवन उनके जीवन के पॉइंट के बराबर भी नहीं है, और हम सब सोचते हैं ये करें वो प्लानिंग, भगवान के नाम के लिए समय नहीं निकालते, बहुत जीवन है। और एक बात आपको बता दूं, ये ऐसा झूठा नहीं है, वास्तव में सत्युग में लोगों की बहुत बहुत आयु होती थी। ऐसा कैसे है पता है, जैसे ब्रह्मा जी की आयु मैंने आपको बताई कितनी है, 8 अरब 64 करोड़ वर्ष जब बीतते हैं हमारे तो एक दिन गुजरता है। ऐसे मैं आपको आज के एग्जाम्पल से बताऊं, आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि ये तो अनबिलीवेबल है, ऐसा कैसे हो सकता है, तो आज के एग्जाम्पल के बताती हूँ मैं आपको। जैसे जब बारिश होती है ना, तो बारिश के दिन जिस दिन बारिश होती है बहुत सारे पंखड़े निकलते हैं, बहुत सारे जैसे ऐसे कीड़े, उड़ते हुए कीड़े आते हैं। जब हम वेला और उत्थल में तो बहुत ज्यादा ये चीज हमें देखने को मिलती है कि इतने सारे कीड़े आते हैं, इतने सारे पंखड़े उड़ते हुए परवाने आते हैं, और बहुत सारे उसी दिन, उससे पहले नहीं थे लेकिन उसी दिन वो आए, उनका जीवन व्यतीत हुआ। और उस दिन पता है वो एक दिन में क्या क्या करते हैं, हमारा एक दिन होता है ठीक है, उसमें क्या करते हैं वो पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, विवाह करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, और लास्ट में जब सुबह होती है ना, जब हम नींद से उठते हैं, जब रात खत्म हो जाती है, तो सारे के सारे झाड़ू के साथ हम उठाते हैं और डस्टबिन में डाल देते हैं, यानी सबकी मृत्यु हो जाती है। हमारा एक दिन था और उनकी पूरी जिंदगी थी। अगर वो अपनी इस जिंदगी में, जैसे कोई ऐसा परवाना, ऐसा कोई कीड़ा आके हमारे सामने, उसको बोलना आता हो और हमारे सामने आके बोले कि भाई मैं अपनी जिंदगी में ये करूंगा वो करूंगा, इसे कमाऊंगा, ऐसे करूंगा, इसे घर बनाऊंगा, तो हम क्या सोचेंगे, हंसी आएगी ना हमें, बोलेंगे कितना पागल है, आज पैदा हुआ कल मरने वाला है और इतनी प्लानिंग कर रहा है। और जब हम प्लानिंग करते ना अपने जीवन में, तो ब्रह्मा जी भी यही सोच रहे होंगे कि कितना पागल है, इतनी सी तो जिंदगी है, 4 अरब
सॉरी 8 अरब 64 करोड़ जब वर्ष बीतेंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन, तो हमारे जैसे कितने कीड़े मकोड़े आएंगे, पैदा होंगे, मर जाएंगे, तो ब्रह्मा जी भी हंस रहे होंगे कि नालायक आज संसार में पैदा हुए हैं, कल इनको मरना है, तो इससे बेहतर नहीं कि वो भगवान की भक्ति करें, भगवान का नाम जप करें, ताकि उनका जीवन सफल हो और उनके समस्त दुखों का अंत हो जाए। ये दुखों का अंत करने के लिए पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं, कमाते रहते हैं, वास्तव में ये सब उनके दुख का कारण बनता है, सुख का कारण नहीं बनता है। और ये भी बता दें कि इस कलयुग की वास्तविक आयु जो है वो 100 ईयर्स है, लेकिन इसमें भी कोई फिक्स नहीं है। हम 60 साल जिए, 70 साल जिए, कभी भी मृत्यु आ सकती है। जिस लोक में हम लोग रहते हैं ना, उस लोक का नाम मृत्यु लोक है। अन्य लोकों में भी मृत्यु आती है, परंतु इस पृथ्वी लोक का नाम स्पेशल मृत्यु लोक इसलिए रखा गया है क्योंकि इस लोक में कभी भी और कहीं भी मृत्यु आ सकती है। जीवन बहुत कम है, समय की महिमा को जानना होगा। और गीता में अर्जुन ने भगवान से पूछा, जब भगवान ने अपना विश्वरूप दिखाया तो विश्वरूप को देखकर अर्जुन कांप गया और डर कर अर्जुन ने पूछा, भगवान को उग्र रूपम, कृष्ण आप ये उग्र रूप में, इतने भयानक रूप में कौन हो, मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ। तो कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने 11.32 में अर्जुन को बताया, कालोस्मि लोक क्षय प्रवृद्धम, मैं काल हूँ, कालो अस्मि, मैं काल हूँ और क्या करूंगा, लोक क्षय कृतम, जितने भी लोक हैं उन सबका नाश करने वाला हूँ, प्रवृद्ध, मैं इतना महान हूँ कि सबको पैदा कर सकता हूँ और सबका नाश करता हूँ। हे अर्जुन, इस संसार में जो लोग मेरा भजन नहीं करते हैं, मेरी भक्ति नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के लिए तो मैं काल हूँ और नष्ट कर देता हूँ उनको, और जो लोग मेरा भजन करते हैं वो तो मेरे प्रिय हैं। और भगवान साफ साफ कहते हैं, ये भजन्ते तुमां भक्त्या मायिते तेषु चाप्यः, और मैं भी उनका प्रेमी हूँ, उनसे प्रेम करता हूँ जो मेरा भजन करते हैं। इस प्रकार हमें काल के स्वरूप को जानकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और भगवान ने भगवत गीता में काल के बारे में बहुत बहुत बताया है। 8.5 में भगवान श्री कृष्ण काल के विषय में कहते हैं, अंधकाले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्यत्र संशय। काल की इम्पोर्टेंस को जानो, कोई भी समय अंतकाल हो सकता है। तो भगवान कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण, अंतकाल में जब आपका समय अंत हो जाएगा ना, उस टाइम पर अगर मुझे अपना शरीर को त्याग करते हुए मेरा स्मरण करोगे तो यह प्रयाति समद्भावम, फौरन से मेरे पास आ जाओगे, याति नास्यत्र संशय, उसमें कोई संशय नहीं है। भगवान कहते हैं, कोई भी समय अंत समय हो सकता है, तो आज से ही मुझे याद करना शुरू कर दो। इसलिए 8.7 में, 8वां अध्याय श्लोक नंबर 7 में भगवान बहुत प्रेम से कहते हैं, क्योंकि कभी भी आ सकता हूँ और अंत में यदि तुमने मुझे याद किया तो तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, और मेरे पास आकर तुम्हारे समस्त दुखों का नाश हो जाएगा, तो क्या करो। भगवान 8.7 में बहुत अच्छी बात कहते हैं, तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धेश, सर्वेषु मतलब सारे टाइम में, कालेषु मतलब टाइम, जितना भी टाइम तुम्हारे पास है, माम अनुस्मर मुझे याद करो, क्योंकि कोई भी टाइम अंत समय हो सकता है, तो हर समय आप मुझे याद करो। और युद्धेश, ऐसा मतलब नहीं है कि तुम खाली मुझे याद करते रहो और कोई काम नहीं करो, दूसरे काम करो, लेकिन हृदय में खाली मुझे याद करो। और वास्तव में भक्तों, इस जीवन का लाभ, अगर प्रॉफिट आपको जानना है, तो शास्त्र कहता है, जन्म लाभ परे पुंसाम अंते नारायण स्मृति, आपके इस जन्म का लाभ क्या है, इस जन्म का प्रॉफिट क्या है, कि अंत में आपको भगवान की स्मृति हो जाए, भगवान को याद आ जाए। हम तो सब बिजनेसमैन के घरों से ताल्लुक रखते हैं ना, हम हर काम करते हुए देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है। तो भागवतम में जब यह प्रश्न उठा कि मनुष्य जीवन का प्रॉफिट क्या है, तो सूत गोस्वामी ने उत्तर दिया, जन्म लाभ परे पुंसाम अंते नारायण स्मृति, अंत समय में मरते वक्त पर अगर आपको भगवान याद आ जाए तो समझ लेना कि मनुष्य जीवन सक्सेस हो गया। और अगर भगवान को याद ना कर सके तो समझो आप फेल हो जाओगे। ये मनुष्य जीवन का प्रॉफिट है, परंतु
अंत समय में भगवान को याद करना संभव ही नहीं है यदि आपने पूरा जीवन उन्हें याद ना किया हो। अंत समय तो परीक्षा की घड़ी होती है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट पूरा साल को किताब खोल कर ना देखे, कुछ कोई भी सवाल याद ना करे, तो क्या अंत समय में जब उसका पेपर हो रहा होता है तो वो कुछ लिख पाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। कहते हैं जब यमदूत सामने आता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ उसी को याद कर सकते हैं जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो वो हमारी परीक्षा की घड़ी होती है। भगवान चाहते हैं कि आप मुझे प्रेम करो, और हम अपने प्रेम को अलग अलग चीजों में डिवाइड कर देते हैं और अंत समय में हमें वही याद आएंगी। इसलिए प्रेम तो केवल कृष्ण को करना है, हृदय में केवल कृष्ण को बिठाना है, तभी हम अंत समय में भगवान को याद कर सकेंगे। क्योंकि यमदूत इतने डरावने होते हैं, अगर हमने पूरी जिंदगी भगवान को याद नहीं किया होगा तो वो हमें उस टाइम पर याद आएंगे भी नहीं। क्योंकि उस टाइम की परीक्षा ये है कि आपने पूरे जीवन में जिसको प्रेम किया है ना, आपको वही याद आने वाला है। और अगर आपने धन से प्रेम किया है तो डेफिनेटली आप नाग बनने वाले हो, क्योंकि धन के ऊपर मंडी के ऊपर बैठता है। कहते हैं, शास्त्र कहता है, अगर आप अनाज से या फिर ऐसे खाने की चीजों से आप है ना प्रेम करोगे तो कॉकरोच बनकर आओगे। और है ना, अगर ना सोने से ज्यादा प्रेम होगा, यानी कि नींद आपको अच्छी लगेगी तो भालू बन के आओगे। अगर खाने की चीजें अच्छी लगेंगी तो हाथी बनकर आओगे। यानी कि अगर हमने उस दिन पढ़ा था ना, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर किसी को तैरने का बहुत शौक है, वो अगर स्विमर बनना चाहता है और अंत समय में उसको याद आता है तो नेक्स्ट टाइम भगवान उसको फिश बना देते हैं। कि जो तुम्हारी इच्छा, जिसे तुम प्यार करते हो, वही सिचुएशन तुम्हारे लिए। भगवान की कितनी कृपा है, और हम ये मूर्ख हैं कि भगवान को प्रेम नहीं करते हैं, इसलिए बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में हमें फंसना पड़ता है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि अपने समय की वैल्यू को समझें, और समय वही सफल होता है जो भगवान के नाम का स्मरण करने में सफल होता है। तो इसलिए कृपया जरूर जरूर अपने इस समय में, अपने पूरे दिन के किसी भी समय में भगवान के नाम का जप करने के लिए समय निकालो। यही इस कलयुग का धर्म है। इस कलयुग में और कोई ना यज्ञ करना है, ना दान देना है, ना तपस्या करनी है, कुछ भी नहीं। शास्त्र कहता है, भागवतम में कहा गया है, कृते यध्यायते विष्णु। सत्युग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेतायाम यज्ञ तो मुख है, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापुरे परिचर्यायाम, द्वापुर में भगवान की मूर्ति पूजा करने से, कलौ तद हरि कीर्तनम। कलयुग में सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम का कीर्तन करने में, भगवान के नाम का जप करने में वो सारे पुण्य आपको मिल जाते हैं जो सत्युग में सत्युग में तपस्या करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से और द्वापर युग में मूर्ति पूजा से आपको मिल रहे थे। हर युग का एक अलग धर्म होता है, भगवान को प्राप्त करने का एक अलग तरीका होता है। और कलयुग में भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए केवल भगवान के नाम का जप करना है। तो आप सबसे निवेदन है, कृपया ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि अपना जप करें, भगवान के नाम को माला पर करने की कोशिश कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई बात बुरी लगे या मेरे मुख से कभी कोई कठोर वचन निकले तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरा कोई उद्देश्य नहीं होता है आपको दुख पहुंचाने का, सिर्फ और सिर्फ एज इट इज शास्त्र की बात आप तक पहुंचाना मेरे जीवन का लक्ष्य है। हरे कृष्ण।